शांति ओम शांति ओम शांति। बहनों की संख्या भाइयों से मेरा ख्याल है 3-4 गुना ज्यादा है, है ना? ये अच्छी बात है। ये रेशो शुरू से चली आई है, तो हम तो बहन भाइयों की बजाय आत्मा को ही देखना है, उस हिसाब से सब ठीक है। ये सब भोपाल जोन वाले हैं भाई बहन, ज्यादातर जो भोपाल जोन वाले हैं, जरा अपना दायां हाथ खड़ा करिए। हम भोपाल जोन ही है, बहुत अच्छा। आपके प्रांत को मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य का मतलब होता है बिल्कुल सेंट्रल, है ना, बीच वाला। तो इसलिए इधर उधर किनारे की बात अलग है, सारा काम सेंटर से ही होता है। तो हम आपको बताएंगे फरिश्ता बनने के लिए क्या करना है कि मध्य में आ जाओ। आप अपने मध्य में आ जाओगे, सेंटर कहाँ का सेंटर, ब्रिकुटी का, तो आप फरिश्ता बन जाओगे। आप कहेंगे हम तो मध्य में हैं ही, है ना, कहाँ से आना है मध्य में, हम तो हैं ही मध्य में। आत्मा कहाँ रहती है, मध्य में रहती है, है ना। किसी छोटे बच्चे से भी पूछो आत्मा कहाँ रहती है, एक छोटी सी कन्या आगे कुर्सी पर बैठी है, उससे पूछो आत्मा कहाँ रहती है, अगर वो चंचल नहीं है तो बता सकती है। अच्छा देखो कह रही है यहाँ रहती है। इसलिए बाबा कहता है आत्मा तो यहाँ रहती है, परंतु आत्मा के अंदर एक मन है, मन। तो शरीर भी यहाँ पड़ा है, आत्मा भी अपनी जगह पर है, तो फिर भागता कौन है, मन भागता है। आप बैठे यहाँ हैं डायमंड हॉल में और पूछोगे तो कहेंगे मैं तो भोपाल घूम के आया हूँ, हो सकता है ना। अच्छा, या मैं सोच रहा हूँ भाई साहब की क्लास पूरी हो और जाके भोजन करें, है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहता है कि सोचने की बात यह है कि इस घूमने वाले को मध्य में कैसे लाए। देखिए एक तरीका तो यह है जो बाबा ने बताया है और बाबा की रोज मुरली में आता है, स्वयं को आत्मा समझ के मुझ पिता परमात्मा को याद करो, इसमें सारा सार आ जाता है। या यूं कहें अव्यक्त बा होने के समय बाबा ने जो 3 शब्द बोले थे, तो पहला शब्द क्या बोला था, निराकारी, उसमें भी सारा कुछ आ जाता है। आ तो जाता है पर आता क्यों नहीं, प्रश्न ये है। तो इसके लिए बाबा कहता है फरिश्ता बनने की बात करना तो बड़ा आसान है और कभी कभी हम बनते भी हैं। आप में से ऐसा कोई है जिसको कभी भी फरिश्ता बनने का अनुभव ना हुआ, कभी भी एक मिनट के लिए भी, है कोई? आप कहेंगे नहीं, हमको कभी ना कभी तो अनुभव होता है, नहीं तो फिर हम लक्ष्मी नारायण में हाथ कैसे उठाते हैं? अच्छा, अब सोचने की बात है कि कौन सी चीज है जो हमें अपने वहां से इधर उधर घुमाती है, और उसका नाम है मैं। आपने कभी फरिश्ते का नाम सुना, फरिश्ते का क्या नाम होता है, फरिश्ते का नाम ब्रिज मोहन हो, ऐसा कभी सुना नहीं? फरिश्ता मैंने, फरिश्ता, फरिश्ते का कभी सुना कि वो कुमारी है या माता है या बुजुर्ग है? नहीं। तो इसलिए शरीर में होंगे, मैं कहेंगे तो हम कहेंगे, अपना परिचय मैं से देंगे। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा कैसे बने कि ब्रह्मा बाबा ने मैं शब्द को मैं के साथ कनेक्टेड सारी चीजों को चेंज कर दिया। अब देखो चेंज कैसे कर दिया कि मैं और मेरा की बजाय हम और हमारा या बाबा का, तो आप देखेंगे फर्क पड़ जाएगा। एक रुमाल भी हो, मान लो आपके पास ये रुमाल है, मैं कहूंगा मेरा रुमाल, कहीं मेरा रुमाल भी जेब में ना निकले तो मैं कहूंगा क्या मेरा रुमाल कहाँ गया, मेरा रुमाल कहाँ है। दो मिनट के लिए तो मैं सोच में पड़ जाऊंगा, हालांकि रुमाल एक छोटी सी चीज है। तो आप देखेंगे आपका मन कहाँ जाता है, जहां मेरा होता है या मैं के साथ कनेक्टेड कोई चीज होती है। आपको यहां मान लो अकोमोडेशन अलॉट हुआ, यहीं पर एक बेड मिला, आप यहां कुछ दिन के लिए हैं, फिर भी आप कहेंगे क्या कहेंगे, आप क्लास के बाद जाओ तो आपकी बेड पे कोई और बैठा हो तो आप क्या कहोगे, भाई ये तो मेरा बेड है। अब देखो वंडरफुल बात है कि नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं छोटी सी चीज, लेकिन इसमें जो गीता के लास्ट दो शब्द हैं, अब बाबा भी मुरली में कहता है वो है नष्टो मुहा और स्मृति लब्धा, अर्थात इसी चीज से मेरा पीठ हो गई है और किसी तरफ मेरा मुंह हो गया। अब क्या होता है कि हम बार बार भटकते हैं। तब बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, पहला काम क्या किया कि लौकिक जो ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना रथ बनाया तो ब्रह्मा बाबा ने लौकिक शब्द को चेंज कर दिया, और हम उसके बच्चे हैं। हमारा भी बाबा ने क्या किया, हमारे नाम के साथ क्या लगाया, कुछ लगाया, क्या लगाया, अपने बच्चों का नाम लगाया ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जन्म लेते ही हम कहते हमारा दूसरा जन्म हो गया, ब्राह्मण जन्म हो गया, तो क्या हुआ, शरीर तो वही है, तो हम बन गए अलौकिक। तो आप एक शब्द याद रखें, फरिश्ता अलौकिक होता है, ठीक है। फरिश्ता ये नहीं ढूंढता कि दुकान पे शॉल खरीदने जाओ, ये शॉल दे दो, नहीं नहीं ये दे दो, फरिश्ता ये नहीं करता, अलौकिक होता है। ये मेरा जूता है, इसलिए भगवान कहता है संगम युग का नाम ही है क्या है। अगर आपने संगम युग का मजा लेना है, बाबा कहते हैं संगम युग मजे का युग है, मौज का युग है, मूंजने का युग नहीं है, और संगम युग पर आपको वो प्राप्ति होती है जो देवताओं को भी नहीं होती। कहता ना बाबा देवता गोल्डन एज के हैं, हम डायमंड एज के हैं। इस हॉल का क्या नाम है, डायमंड हॉल, क्यों, इसमें कोई डायमंड थोड़ी लगे हुए हैं, लेकिन इसमें बैठने वाली आत्माएं डायमंड है। यहां कोई शरीर समझ के नहीं बैठता, ना वो ये समझता कि मेरे को सुनाने वाला शरीर है। मान लो अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो शरीर को देखते क्या, गुलजार बहन आप अव्यक्त बाप दादा है क्या, नहीं, हमें पता है आप भी देखने वाले हैं। आप यहां क्यों आए, क्योंकि डायमंड कोहिनूर डायमंड डायमंडों को देख रहा, अर्थात हम आत्मा है, चमकीले आत्मा। और डायमंड की क्या खूबी होती है, वो चमकता भी है और हार्ड होता है, उसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। तब बाबा कहता है कि आप इतने पक्के मेरे बच्चे हो गए, सारी दुनिया में कोई कहे जी नहीं तुम शरीर हो, आप मानोगे? रात को सो रहे हो तो भी कहे नहीं नहीं तुम शरीर हो, आप कहेंगे नहीं मैं आत्मा हूं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि पहला काम तो लौकिक छोड़ा। मैंने देखा एक बार ब्रह्मा बाबा का शरीर ठीक नहीं था, बीमार थे, तो ब्रह्मा बाबा बॉम्बे गए, आबू से बॉम्बे गए, तो हमने देखा पहली बार गए थे तो ब्रह्मा बाबा के बच्चे तो पता है बाबा विदाई ले रहा है, जितने सेवाधारी थे, कपड़े धोने वाले थे, सर्वेंट थे, मालिक रो रहे थे जैसे उनका बाप जा रहा हो, बहुत रो रहे थे। अच्छा, फिर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अलग से प्लेटफार्म अलग बाबा का कमरा खोल दिया, हमने जिद की हम भी जाएंगे बॉम्बे। अच्छा, चले गए। अब वहां क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा हॉस्पिटल में है, उनको कोई लौकिक वाले मिलने आते थे, दूर दूर के पुराने सिंधी लोग, वो दादा कहते थे, समझते थे दादा बॉम्बे आया है, जैसे गुलजार दादी के रिश्तेदार थे और थे, तो वो तो बाबा को दादा देख के आते थे, पर हमने देखा जब वो बाबा से मिलने आए बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया, ना उसका नाम पूछा, ना तू फलाना है फलाना ना, तो वो व्यक्ति सुनते सारी उसको लौकिक तो भूल गया। तो ये ब्रह्मा बाबा ने लौकिक क्या होता है एकदम चेंज, सारी इतना फेमस ब्रह्मा बाबा सम्माननीय, लेकिन जो ही बाबा ज्ञान में आए तो सारे लोग ऑपोजिशन करने लगे, पर बाबा ने उसकी परवाह नहीं की। उसके बाद बाबा ने सोचा कि चलो मेरी कुछ जायदाद है, मेरा कुछ पैसा है, मैं निमित्त हूं, ब्रह्मा बाबा बना हूं, मुझे सारा रचना करना है। फिर भी ब्रह्मा बाबा ने उसको भी हटा दिया। पहला काम क्या किया कि माताओं बहनों की एक कमेटी बनाई और प्रैक्टिकली अपना सारा कुछ आपके समर्पण है। अब देखने में तो साधारण चीज लगती है लेकिन इसमें बड़ी गहरी बात है। गहरी बात क्या है कि मैं हो गया ट्रस्टी, तो मेरा तो नहीं रहा, संस्था का नाम क्या रखा, ब्रह्मा कुमारी, ताकि काम ब्रह्मा कर रहा है लेकिन मेरी नहीं है। तो अब बाबा ने हमें भी यही सिखाया, तो कैसे सिखाया मैं आपको बताऊं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीखता था, पढ़ता था, तो मैं पास हो गया जब, तो दिल्ली में मैंने एक ऑफिस बनाया जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं। तो जब मैं मधुबन आया तो ब्रह्मा बाबा को मैंने मुझे पूछा, बच्चा तुम पास हो गए? मैंने कहा हाँ। क्या करते हो? तो मैंने कहा बाबा, बड़ी फखर से मैंने कहा कि दिल्ली के बहुत अच्छे बिजनेस एरिया में मैंने दफ्तर लिया है। तो बाबा बोले थोड़ा करीब आ जाओ। करीब तो मैं था ही, और करीब चला गया। अब बाबा की क्या पर्सनैलिटी, तो बाबा ने मुझे कहा, बच्चा देखो तुम अगर ये प्रैक्टिस करोगे ना तो सारा ध्यान जाएगा, भोजन भी करोगे, पता नहीं क्या खा रहे हो, तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो, अपना काम किया, बुद्धि तुम्हारी फ्री हो जाएगी। बाबा ने कहा, हमने नौकरी कर ली। अब क्या हुआ, जब मुझे पहली सैलरी तनख्वाह मिली तो जैसे भारत में करते हैं अपने गुरु को भेज देते हैं, तो मैंने अपनी पहली सैलरी का चेक बना के रजिस्टर्ड लेटर से चिट्ठी लिख के बाबा को भेज दिया यज्ञ में, तो बाबा ने रजिस्ट्री करा के वापस कर दिया। आप हैरान होंगे, रजिस्ट्री करा के वापस कर दिया कि बच्चे ने क्यों भेजा है? तो मैंने सोचा बाबा कहता है जिसका मैं सफल करना चाहूं उसका ही करता हूं, है? तो मेरा बाबा सफल नहीं करना चाहता। अब बाबा ने खुद कहा था तुम सरकारी नौकरी कर लो, और सरकारी नौकरी की तनख्वाह तो ईमानदारी की होती है, तो ये बाबा ने क्यों किया। तो मैंने उठा करके ज्ञान की जितनी पॉइंटें हो सकती है लिख के बाबा को चिट्ठी लिखी कि बाबा आप ऐसे ऐसे कहते हो और आप मेरा सफल नहीं करना चाहते, और आपने तो कहा था नौकरी कर लो और ये तो ईमानदारी की कमाई है आदि आदि। तो फिर बाबा का लेटर आया, बाबा हमेशा लिखते थे पत्र पाया हर्षाया, उसके बाद लिखा कि बाबा इस बारी तो रख लेता है लेकिन बच्चे अगली बारी से तुम बाबा के बच्चे हो, बाबा का ही समझ के बाबा की सेवा में लगा। अच्छा, तब मेरी समझ में आया कि हम मेरा और बाबा का अलग करते हैं। आप लोग भी देखो, आप धन कमाते हो, घर में रहते हो, अच्छा इतना यज्ञ में भेज दो, है ना, कुछ ज्यादा भेजता है कितना भी, लेकिन ये तो रहता है ये यज्ञ का, ये मेरा, बाकी तो मैंने यूज करना है ना। अच्छा, अब मेरा तो आ गया, तो मेरा मैं आजादी से अपनी मर्जी से यूज करूं, हाँ बाबे को दे दू। तो अगर मैं, बाबा ने कहा तुम ही करो सेवा में लगाओ, अब मेरी डबल जिम्मेवारी हो गई कि मुझे दे दिया पर मेरा नहीं है। अब बाबा ने कहा अब ये बाबा का है, बाबा की सेवा में लगाओ। तो जैसे जिसको हम कहते हैं निमित्त या ट्रस्टी, उसके दो मतलब होते हैं। एक तो ये कि मेरे ऊपर बोझ नहीं है, जैसे कुछ हो जाए तो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा है ही नहीं, फायदा हो जाए तो भी मालिक का, नुकसान हो जाए तो भी मालिक का, मैं तो ट्रस्टी हूं। जैसे एक दुकान पे सेल्समैन होता है, वो तनख्वाह लेता है, सामान बेचता है, अगर कोई चीज कोई कस्टमर मान लो के वापस नहीं करने आता, कुछ होता है उधार ले जाता है, तो मालिक का काम है, वो तो कहेगा मैंने ऐसे आपने कहा था मैंने इसको दे दिया। लेकिन फिर उसकी जिम्मेवारी भी होती है कि मैं ऐसा उल्टा काम ना करूं। आप भी, आपके घर का पड़ोसी कोई कहे कि मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं जी, मेरे घर के पौधे लगे हुए हैं बाहर, आप इसको पानी दे देना, आप पड़ोसी आप मान जाएंगे, लेकिन आप बहुत ध्यान रखेंगे, अपने पौधों को बाद में पानी देंगे, उसके पौधों को पहले देंगे कि भाई मेरे को ट्रस्ट, मेरे को सौंप गया। तो इसलिए बाबा ने ये सौंपने का सौंप दिया, उसके बाद रह गया अपना शरीर और आत्मा। अब बाबा ने क्या किया कि टोटल श्री, पहले तो देह और देह के संबंध लौकिक में, फिर अलौकिक में भी मैं नहीं कहा। आप बाबा का त्याग देखो, त्याग तो हम लोगों ने भी किया है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का त्याग, कि ब्रह्मा बाबा ने आज के दिन देह भी त्याग दिया। इसलिए त्याग दिया, शरीर में तो सेवा करते ही थे, हमने देखा दिन रात हर वक्त, लेकिन बाबा ने सोचा मैंने तो सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है, तो शरीर तो एक बंधन है, थोड़ा जितना भी निंद्रा जीत हो जाओ, जितना भी कम समय लगाओ, कुछ टाइम तो शरीर पर लगता है, फिर आप शरीरधारी हो, या आप तो किसी से मिलने जाओ या वो आपके पास आएगा, तो फरिश्ता बन जाओ तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। जैसे हम लोग सपने में कहीं भी घूमते हैं, सपने में हम क्या होते हैं, आपको फरिश्ता बनना मुश्किल लगता है, सपने में हम क्या होते हैं, शरीर तो पड़ा है, आप सैरे करते हो, कभी गिरते हो तो फील भी होता, अरे क्या हुआ, सारा अनुभव होता है कि नहीं होता फिर, लेकिन होता क्या है, बॉडी पड़ी है, सूक्ष्म शरीर है। इसी प्रकार से आप गौर से सोचो, आत्मा और सूक्ष्म शरीर सब कुछ कर सकता है, अनुभव भी कर सकता है और उसको तकलीफ भी नहीं होगी। सूक्ष्म शरीर से आप सपने में जाके किसी जगह 20 रोटियां खा लो, आपको होगा तो कुछ नहीं, नहीं क्योंकि शरीर तो है ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है, आपने देखा होगा निराकारी फिर निर्विकारी सूक्ष्म में। कभी बाबा कहता है आपको कोई चीज चाहिए सूक्ष्म लोक में आ जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर कौन सा है बाबा का बताओ? हाँ? बाबा का सबसे बढ़िया रिट्रीट सेंटर कौन सा है? सूक्ष्म लोक है कि नहीं? जब मर्जी बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि नहीं मधुबन के लिए, कि मधुबन एक बगीचा है, मधुबन सागर का बीच है, ये तो फिर भी मधुबन आपको आना पड़ेगा, लेकिन आप बैठे बैठाए, खुला निमंत्रण का गीत भी है, आप बैठे बैठाए सूक्ष्म लोक चले जाओ। ना वहां टाइम है, ना दिन है, ना रात है। फरिश्ता कुर्सी पर बैठता है क्या? फरिश्ता कहता है मुझे कुर्सी दे दो, फरिश्ता कहता है मुझे अगली सीट दे दो, नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि वो जगह ऐसी है मैंने बनाई है कि कोई भी बच्चा कितना भी टाइम जो चाहे, चाहे सारे दुनिया के बच्चे भी आ जाएं, जैसे कहता है मेरा दिल तख्त बहुत बड़ा है, तो सूक्ष्म लोग इतना बड़ा है और उसमें आपको बाप दादा दोनों मिल जाते हैं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तब बाबा कहता है ये है फरिश्तों की दुनिया। तो उस फरिश्ते को बनने के लिए एक तो ये मैं है ना, जो मैं और मेरा, मैं शरीर। तो बाबा कहता है शरीर में रहते हुए दुनिया के लोगों ने क्या गलती की, मैं शरीर। बाबा कहते हैं तुम आत्मा, तेरा शरीर। इसी तरह बाबा कहता है कि ये हर चीज यहां आत्मा से कनेक्टेड है। गीता में भी लिखा हुआ देह और देह के संबंध। तो पहली बात ये है कि जो फर्स्ट लेसन भी है हमारा कि मैं आत्मा हर कुछ करती हूं। तो आप क्या करना है, अगर आपने फरिश्ता बनना है, आप समझो कि मैं आत्मा इस शरीर को कुर्सी पर बिठा के डायमंड हॉल में बैठी हूं। उठोगे तो क्या करना है, मैं आत्मा उठ करके अब भोजनालय में जा रही हूं। भोजन करोगे तो क्या करना है, मैं आत्मा इस शरीर को, जैसे कार में पेट्रोल डालते हैं, कार को टेस्ट नहीं आता। हम चेतन है तो हमें टेस्ट भी आता है कि दाल खाई, चावल खाया, लेकिन इस शरीर में पेट्रोल डाल रही हूं, ठीक है। अब फिर बाबा कहते हैं बाबा को सांस याद रखोगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, होगी तो बाबा ठीक कर देगा। तो डबल फायदा है। इसलिए अभ्यास तो ये है, लेकिन आप सारा दिन में देखोगे होता क्या है, जब बाबा रोज कहता है बच्चे चार्ट लिखना नहीं चाहते, लिखते हैं तो सोचते हैं क्या लिखूं, कितना याद किया। एक तो भोलेपन में लिख देते हैं, हर वक्त ही याद रहती है, तो कई फिर सोचते हैं कि मैंने आत्मा के नाम पे भी हम बॉडी कॉन्शियस के काम करते हैं, क्योंकि बाबा कहता है संगम का शरीर बड़ा वैल्यूएबल है, हैं? तो संगम के शरीर का बहुत ध्यान रखना है, तो इसका फायदा लेकर शरीर का ध्यान ज्यादा रखना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने ये थोड़ी कहा कि संगम के शरीर का ध्यान रखते रखते तुम अपनी पढ़ाई, अपना योग छोड़ दो। हमने ऐसे भी कुछ देखे हैं, क्लास के टाइम में सैर करने जाते हैं, तो मुरली तो पढ़ लेंगे, शरीर बड़ा जरूरी है बाबा ने कहा हुआ, तो ये बॉडी कॉन्शियस नहीं हुआ। अच्छा, तो इसलिए बाबा कहता है कि अगर फरिश्ता बनना है तो पहले यहां बनना पड़ेगा, यहीं बनना है, फिर ऑटोमेटिकली हमारा फरिश्ता रूप फील होगा। तो फरिश्ता होता है हल्का। अच्छा, शरीर के वजन की बात नहीं है, बाबा कहते शरीर के वजन में तो खुशी होती है तो मोटा आदमी भी डांस कर लेता है। वजन है आत्मा के ऊपर। हम कौन सा वजन है, अगर आपने मैं कहा तो मैं के साथ की सब चीजें आपकी स्मृति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। अच्छा, किसी को आज के जमाने में कहो कि तेरा वजन 20 किलो बढ़ा देते हैं, तो मानेगा कि मैं बढ़ाऊं? कहता नहीं जी। लेकिन उसको कहो कि तेरी जो धन है ये दुगना कर देते हैं, तो मानेगा कि नहीं? वजन दुगना कराने को तैयार नहीं है, धन दुगना कराने को तैयार है, लेकिन क्या दुगना धन भी तो वजन नहीं है? बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे जो एक्स्ट्रा है उसको सेवा में लगाते रहो, उसका बोझ है सोचते रहेंगे कहाँ रखूं, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, चोर ना ले जाए, फलाना ना देख ले, बोझ बुद्धि पे तो चढ़ गया। इसलिए बाबा ने आजकल क्या कहा है, अपनी बुद्धि रखो क्लियर, मन को रखो साफ, बुद्धि को भी रखो साफ। किस चीज से? अब आपने देखना है ऐसा कौन सा वजन है जो हमारे मन बुद्धि पर पड़ता है उड़ने नहीं देता। आपको पता है वो कौन सा वजन है? है बड़ा छोटा सा पर वजन बहुत भारी है, क्योंकि मन बुद्धि पर जरा सी चीज भी वजन पड़ेगी तो नीचे। वो क्या है? आप सारे दिन में देखो कि कौन सी चीज ऐसी है जो आपको नीचे रखती है, उड़ने नहीं देती। आपको परम धाम का तो पता है ना, परम धाम कहाँ? अच्छा, बाबा खुद ड्रिल कराता है कि बच्चे चलो बीच बीच में चलो 10 सेकंड के लिए परम धाम पहुंच जाओ। 10 सेकंड क्या होते हैं? अभी भी हम कहें 10 सेकंड परम धाम पहुंच जाओ, आपको क्या दिक्कत है? पहुंच गए, लेकिन हर वक्त क्यों नहीं सोचते कि हम परम धाम में हैं, परम धाम से यहां आए? कारण ये है कि मन के ऊपर वजन पड़ता है, और मन के ऊपर वजन किसका पड़ता है? जिसको कहते हैं व्यर्थ, व्यर्थ। तो आप एक बात नोट कर लो, अगर आपने फरिश्ता बनना है तो एक ही रुकावट है, वो व्यर्थ। व्यर्थ सतयुग में व्यर्थ होता है। आपके ख्याल में स्वर्ग में या देवी देवता कोई चीज वेस्ट करते हैं? सतयुग में कूड़ेदान होता? क्या ख्याल है आपका? होता नहीं? होता। तो ये तो बाहर का कूड़ेदान है, यहां का। सतयुग में किसी की बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार का भी एक भी व्यर्थ संकल्प आता है? श्री लक्ष्मी नारायण व्यर्थ सोचते होंगे? क्या ख्याल है? इसीलिए स्वर्ग के लिए क्या कहा जाता है कि सतयुग और कलयुग में क्या फर्क है? सतयुग में हर चीज ठीक समय पर होती है। यहाँ ठीक समय पर होती है? जब आप रात को सोना चाहोगे तो नींद नहीं आएगी, अमृत वेले उठना चाहोगे तो आंख नहीं खुलेगी। अच्छा, ट्रेन में जाके वो तो ट्रेन लेट हो जाएगी। कोई चीज यहाँ ठीक समय पर होती नहीं। एक बारी मैं आगरा गया कॉलेज के दिनों में, तो आगरा से हमें दिल्ली आना था, तो उन्होंने कहा जी ये ट्रेन जो है इतने बजे आती है, 3 मिनट ठहरती थी, वहां एक छोटा स्टेशन है राजा की मंडी। तो मैं वहां खड़ा हो गया कि ट्रेन ने 3 मिनट ठहरना है, लेट ना, मैं जल्दी पहुंच जाऊं। तो वो ट्रेन जो थी 12 बजे आनी थी, 12:15 ही आ गई। मैंने कहा शुक्र है कि मैं पहले आ गया। फिर मैंने पूछा तो कहते जी कल वाली है, ये दूर से आती थी मद्रास वगैरह से। और इसी प्रकार से आप देखो कि कल यहां पर कोई चीज समय पर नहीं होती। अच्छा, तो सतयुग में हर चीज ठीक समय पर होती है, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति भी ठीक समय पर, बारिश भी ठीक समय, जो पंक्चुअल होते हैं और रेगुलर होते अपना काम समय पर करती है। तो सतयुग में हर चीज ठीक समय पर और ठीक स्थान पर होती है। ये भी है कि स्थान भी ठीक होना चाहिए, ऐसे नहीं। मान लो ठीक समय का मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी को बहुत अच्छा गाना आता है तो रात को 12 बजे वो जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा, समय गलत है ना। अच्छा, किसी को बहुत अच्छा मतलब अच्छी, आप जानते हैं कि मंदिर में जो काम होता है वो घर में नहीं होता, स्थान का बड़ा महत्व है। तो इसीलिए गंगा बहुत बहती है लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करो, स्थान का महत्व बताने के लिए इस वक्त स्नान करो और यहाँ पर करो। तो यहाँ पर समय स्थान सिखाया जाता है शुभ कह के, वहाँ नेचुरल होता है, ठीक समय पर ठीक स्थान पर ठीक तरीके से, विधि भी ठीक होनी चाहिए। कई व्यक्ति सच बोलते हैं लेकिन ऐसा सच बोलते हैं जैसे किसी को लठ मार रहे हो तो अगले को पसंद नहीं आता। झूठ वाला बहुत मीठा बोलता है तो लोग झूठ को पसंद करने लग जाते हैं। कचहरी में कोर्ट में यही होता है, जो सच्चा गवाह होता है वो तो ऐसे जाता है, झूठा माई बाप हजूर ऐसे करके जाता है तो उसकी सब सुन लेते हैं। इसलिए ठीक स्थान ठीक समय और ठीक विधि जिसको हम मर्यादा कहते हैं उससे होती है। तो हर चीज मर्यादा में रहती है, प्रकृति भी मर्यादा में, शरीर भी ठीक रहता है, शरीर कभी बे टाइम मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो वहां कहते ही नहीं, कभी बीमारी नहीं आती। और कलयुग में क्या है, हर चीज उल्टी, यानी किसी को भी कहीं भी कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये कलयुग है। अब बताओ फर्क क्या है व्यर्थ, अगर आप अपनी जिंदगी का देखें एक्चुअल टाइम आपने कितना जिया तो आप देखेंगे बहुत तो व्यस्त चला गया। पहले भोपाल से ट्रेन पकड़ो फिर यहाँ आओ फिर बस पकड़ो फिर यहाँ, कितना टाइम तो आने जाने में लग गया। हर रोज आप देखेंगे कि 80% व्यर्थ है आज कल युग में। अकाउंट लिखो फिर दूसरा कहेगा चेक करवा, टिकट चेक करवा, झूठ, मतलब कोई भरोसा ही नहीं है। तो इसलिए हर चीज में वेस्ट है। अब बाबा कहता है वेस्ट होगा किसी चीज में, दूध में आप 80% पानी डाल दो तो क्या होगा है? वो तो दूध ही रहा ही नहीं ना, ये हाल है। इसलिए बाबा कहता है कि आपको अगर फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ को खत्म करो, और व्यर्थ होता है संकल्प। इसलिए बाबा कहते हैं कि व्यर्थ को खत्म कैसे करें, आपको मैं और बताऊं। कई बार आप बहुत सारी बचत करते हो, यहां भी समय बचाओ यहां भी बचाओ, लौकिक में नहीं जाओ ये काम करो, उस बचत को भी अगर व्यर्थ का संस्कार है बचत भी व्यर्थ में चली जाए, इतना खतरनाक है। व्यर्थ आपके समय को आपके साधनों को आपकी हर चीज को खा जाता है, जिसको हम आलसल बेला बल कहते हैं ये भी व्यर्थ ही है। अगर आपको व्यर्थ का ध्यान रहे आप कभी आलस नहीं करोगे। सवेरे अमृत वेले आलस आता है, खास आता है, क्योंकि माया को पता है ये मौका है, कुछ बहाना करके इसको सुला दो, आधे घंटे बाद बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। उस वक्त क्यों होता है कि हाय हड्डियां टूट गई, नींद आ रही है, सारा दिन वेस्ट जाएगा, थोड़ा रेस्ट कर लो, ये माया की चलाकी है। अच्छा, सचमुच भगवान कहता है अगर तुम्हारी खाट पर काला सांप आ जाए अमृत वेले हैं, ऐसे करने लगे तो फिर तुम कहोगे कि भाई मुझे तो रेस्ट करने दो, दिन में थके नहीं थके। या कोई कहे तुम्हारी खाट के नीचे एक टाइम बॉम्ब रखा, वो आधे मिनट में फट जाएगा, फिर क्या होगा। तो परिस्थिति अगर आप देखोगे तो सब बहाने हैं। हम कहते हैं जी बड़ी सर्दी लग रही है, स्वेटर पहनो कोट पहनो, जब आप नहाते हैं तो क्या पहना हुआ होता, उस वक्त नहीं आपको सर्दी लगती क्योंकि नहाना है। इसलिए बाबा कहता है जो काम करना है उसमें आप खुद देखेंगे, जो काम करना हो तो भगवान कहता है संगम का समय बहुत वैल्यूएबल है, हम भी जानते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जरूरी जरूरी काम करके ना, मुझे क्लास करना है, मुझे ये सब करना है, मुरली पढ़ना है, लिखना है, बाकी हम फ्री हो गए। यानी यही काम है मेरा, बाकी टाइम फ्री है, अर्थात उसको मैं व्यर्थ कर सकता हूं। क्या ये ठीक है? ब्रह्मा बाबा करते थे ना, वो कहते तुम अभी भी मुरली में है, कोई नहीं कह सकता कि मुझे सेवा नहीं है। आपको सेवा दी जाएगी क्या? नहीं, मनसा सेवा तो हर एक कर सकता है, पर इतना ध्यान हो। ब्रह्मा बाबा रात को जाग जाग कर और हर वक्त आवाहन करते थे, वो आज का सीन नहीं देखते थे। देखो ब्रह्मा बाबा ने विदेशियों का, ब्रह्मा बाबा को पता था कि मुझे विदेशियों को भी मेरे बच्चे बनने हैं, तो उनको आवाहन किया बैठकर, सारे सकाश दिया। ब्रह्मा बाबा ने 69 में शरीर छोड़ा है और 72 में पहले विदेशी पैदा हुआ है, तो कितना उसने तपस्या की हर चीज में। अभी भी बाबा कहता है कि तुम सारी दुनिया की सेवा करनी है तो कैसे करोगे? आपके पासपोर्ट लेके विदेशों में घूमोगे? नहीं, करनी सबको है। तो बाबा कहता है वही तुम्हारा मन, मन अगर विल पावर है, अर्थात मन में शक्ति है, उसकी बढ़ाओ, उसको एकाग्र करो और फिर तुम अमृत वेले बैठ करके, मेरे साथ बैठ करके वाइब्रेशन दो। अब आप कहेंगे वाइब्रेशन से कैसे उनकी सेवा हो जाएगी? तो बाप जैसे आप खुशबू होती है ना, ऐसे टीन में ऐसे दबाओ तो खुशबू फैल जाती है, अगरबत्ती जलाओ उसकी भी खुशबू फैल जाती है, कोई खराब चीज होगी उसकी बैड स्मेल फैल जाती है। हर चीज का वाइब्रेशन होता है और पावरफुल वाइब्रेशन मन का होता है, क्योंकि मन की स्पीड इतनी है एक संकल्प, आप एक संकल्प में कहीं भी पहुंच सकते हो। अपने बचपन में चले जाओ, दूर चले जाओ, समय को भी और स्थान को भी मन जीतता है। इसलिए फरिश्ता तो जीता हुआ होता है, अब फरिश्ता एक सेकंड में पहुंच जाता है, क्यों? मन काम करता है। तो अब बाबा कहते हैं कि मान लो, निर्वैद जी भी आपको समझा रहे थे कि आज दुनिया में इच्छाएं बहुत हैं, हमारा भी स्लोगन है इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। दुनिया वाले भी जानते हैं कि जितनी इच्छा बढ़ाओगे, इच्छा कभी खत्म नहीं होती, परेशान होगे। तो आज की सारी दुनिया में अमीर है या गरीब है, परेशान है इच्छाएं। अच्छा, अब हम अगर हम अपनी इच्छाओं को खत्म किए हुए हैं, इच्छा मात्र में विद्या है, तो सारे ब्राह्मण है। बाबा कहता है हर ब्राह्मण कहता है जो पा लिया था पाना, मेरे को कोई इच्छा नहीं। ऐसी आत्मा जिसको खुद इच्छा नहीं है, जब अपने वाइब्रेशन भेजती है इच्छा वालों पर, तो क्या होता है? जैसे आग के ऊपर पानी बरसाया जाता है, तो उनकी इच्छाएं कम होती हैं और उनकी जो भटकना है वो खत्म होता है। ऐसे जैसे भाई साहब निर्भय जी भय का सुना रहे थे, आज दुनिया में भय बहुत है। अच्छा, सारी दुनिया का भय कौन दूर करेगा? तो बाबा कहता है तुम बच्चे निर्भय हो, क्यों हो? कि तुम आत्मा को मानते हो। शरीर क्या मरने का भय होता है जो शरीर मानता है। तो तुम अगर निर्भय होकर कह रहे ये तो आत्मा है, शरीर तो बदलता रहता है, ये लोगों को मृत्यु का भय है, वाइब्रेशन दोगे उनका भय घटेगा। इस प्रकार से ज्ञान तो मोटा है, लेकिन इसको आप रिफाइन कर करके अपने लिए भी यूज करोगे, दूसरों के लिए, तब फरिश्ता बनेगा। एक बात और है, हमारे पिछले जन्मों के काफी हिसाब किताब है। अब बाबा ने कहा हुआ है कि जिस दिन आपके हिसाब किताब पूरे हो गए, ये शरीर नहीं रहेगा। अभी शरीर है तो हिसाब किताब है, फरिश्ता हम बन नहीं सकते जब तक हिसाब किताब खत्म नहीं करेंगे। एक तो हिसाब किताब खत्म करना पड़ेगा, दूसरा जो हमारी ड्यूटी है विश्व सेवा। अब ब्रह्मा बाबा देखो बिल्कुल अव्यक्त है, इतने सालों से अव्यक्त है, फिर भी चाबी नहीं देता शिव बाबा के नई दुनिया का गेट खोलो। क्यों? बाबा कहते हैं कि तुम्हारे साथी तैयार हैं, बहुत सारे तैयार हैं, पूरे तैयार हैं, मैं तो खोल सकता हूँ। इसी प्रकार से हमारे पर भी ये लॉ लागू होता है कि जब तक हम अपनी जो हमारी सेवा की जितनी जितनी नंबर वाइज ड्यूटी है वो नहीं पूरी करते, पिछले वर्ग विकर्मों को योग लगा के चुकतू नहीं करते, मैं को मारते नहीं, और लास्ट बात यह है कि फरिश्ते की जीवन दूसरों के लिए होनी चाहिए। आप ये समझ गए, मैं तो छोड़ो, जीवन मेरे लिए नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा की जीवन दूसरों के लिए थी, और बाबा एग्जाम्पल देता है कि जैसे वृक्ष की जड़ होती है, हम लोग जड़ में बैठे हैं। ब्राह्मणों को बाबा कहता है अब जड़ हो, शिव बाबा बीज है। अब जड़ जो है बीज से जो कुछ लेती है खुद रखती है या ऊपर भेजती है। जड़ हमेशा हरी होती है लेकिन जड़ अपने पास नहीं रखती, बीज से जो मिलता है पेड़ को देती है, अर्थात देती है, रखती नहीं है। तो आप देखोगे बाबा जो भी बात कहेगा डबल कहेगा। क्या कहेगा? उड़ो और उड़ाओ, ये कभी नहीं कहेगा उड़ो, खुश रहो और खुशी बांटो। ये जो दूसरा हिस्सा है ना, ये फरिश्ता बनाएगा हमें। पहला है खुश रहो, मैं ही खुश नहीं तो दूसरे को क्या खुश करूंगा। जैसे सड़क पे खड्डा है, पानी जा रहा है, तो पहले तो खड्डे को भरेगा ना, फिर आगे जाएगा, तो पहले तो मुझे अपने को रखना है। लेकिन अपने को रखना काफी नहीं है, अगर आप 100 कल्याणकारी हो गए भी तो त्रेता में जाओगे, और अगर विश्व कल्याणकारी हो गए तो सतयुग में जाओगे। इसलिए करने के साथ कराना है। बाबा कहता है ज्ञान सुनो और सुनाओ, इसी प्रकार से उड़ो और उड़ाओ। मैं कहूं मैं ही फरिश्ता बन के उड़ जाऊं, बन ही नहीं सकता, उड़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जीवन दूसरों के लिए हो जाए, खाएंगे हम भी, सोएंगे हम भी, नहाएंगे हम भी, लेकिन जीवन दूसरों के लिए, क्योंकि सारी प्रकृति में हर चीज दूसरे के लिए है। उसको देवता कहते हैं। सूर्य को देवता क्यों कहते हैं? सूर्य अपनी गर्मी और रोशनी दूसरों को देता। जल को देवता क्यों कहते हैं? पानी अपने आप को खुद नहीं पीता, नदी अपना जल नहीं पीती, दूसरों को देता है। इसीलिए हमारे लिए तो कृपया फरिश्ता बनना एक तो थ्रेटिकल है, एक प्रैक्टिकल है। तो अगर आप इन चीजों को अटेंशन में रखेंगे तो आप चलते फिरते जो भी आपको कोई प्राप्ति हो जाए, कोई खुशी हो जाए, कोई फैल, आप देखो कैसे हल्के हो जाते हो। यही बात है। ओम शांति।